समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी को दिव्या तोमर का नमस्कार। मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार, इसके अलावा इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और कुछ मशहूर हस्तियों को याद करेंगे। श्रोताओं, आज इंजीनियर्स डे है। आज का दिन सभी अभियंताओं को धन्यवाद करने का दिन है। साथ ही हम सब में छिपे इंजीनियर को पहचानने का दिन भी है, क्योंकि देखा जाए तो शगुन हर इंसान इंजीनियर है।
Right.
कुछ मकान बनाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो कुछ मशीन बनाते हैं, और हम जैसे लोग जो कि उनकी कहानियों को स्याही में डुबोकर उनको अमर बनाते हैं।
ट्रूली
बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी बौद्धिक प्रतिभाशाली और सृजनशील मस्तिष्कों को इंजीनियर्स डे यानी कि अभियंता दिवस की शुभकामनाएं।
वेल, एवरी ईयर ऑन दिस डे, दैट इज 15th of September, वी रिकग्नाइज द वाइटल रोल इंजीनियर्स प्ले इन शेपिंग आवर वर्ल्ड, फ्रॉम डिजाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दैट मेक आवर लाइव्स इजियर, राइट?
बिल्कुल शगुन।
सो वंस अगेन ऑन दैट वेरी नोट, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। एंड ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। ऑल्सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू मेट्रो सिटी अपडेट्स, एंड देर इज अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन दैट वी विल बी एक्सप्लोरिंग। So let's begin with the headlines first।
आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। तो सबसे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से झारखंड, गुजरात और ओडिशा की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वे आज झारखंड में टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। श्री मोदी 660 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे। वे टाटानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रमुख बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित रहेंगे। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री 5 करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। उन्होंने कहा कि 46,000 लाभार्थियों के नवनिर्मित घरों का गृह प्रवेश कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज एम्फसाइज द नीड फॉर इंक्रीज्ड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनआईए एंड स्टेट एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स टू स्ट्रेंथन द काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर। He said this while chairing the second day of the 2-day National Security Strategies Conference 2024 in New Delhi yesterday. In his remarks, Home Minister appealed to state DGPs to work towards achieving Prime Minister Narendra Modi's vision of a prosperous, strong and developed India by 2047. Home Minister proposed a detailed strategy to augment counter-terrorism efforts, including cooperation with international agencies and enhance capacities to prevent terror financing. He expressed satisfaction on success in anti-Maoist efforts and cautioned states which had recently achieved success in freeing areas of armed formations to maintain vigilance. Mr. Shah underscored that substantial progress had been achieved in solving legacy national security concerns such as Jammu and Kashmir, left-wing extremism and Northeast. He said that it was now incumbent to identify emerging national security challenges, including narcotics, rogue drones and online fraud, and tackle them before they became major challenges.
प्रधानमंत्री कल गुजरात के गांधीनगर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। वे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 4th वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और सेक्शन 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो सवारी करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को ओडिशा जाएंगे, जहां वे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। श्री मोदी भुवनेश्वर में 3,800 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।
In West Bengal, Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested former principal of Arjikar Medical College and Hospital, Sandeep Ghosh, and former officer in charge of Tala Police Station, Abhijit Mandal, in connection with the rape and murder of a Kolkata doctor. They were arrested yesterday on charges of tampering with evidences and misleading the probe, which is being carried out into the gruesome incident at the state-run hospital last month. Two more Kolkata police officials are under the CBI scanner. The probe agency is also questioning a sub-inspector of Tala Police Station regarding the case. Sandeep Ghosh is accused of being involved in causing considerable delay in registration of FIR. While the trainee doctor's body was found on the morning of August 9, the police took over 12 hours to convert the case of unnatural death into an FIR. Earlier, Ghosh was arrested by the CBI in a separate probe related to financial irregularities.
इस वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में युवा फिल्म निर्माताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू भारतीय फिल्म खंड की शुरुआत की जाएगी। इस खंड में अधिकतम 5 डेब्यू फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। श्रेष्ठ डेब्यू भारतीय फिल्म खंड के लिए प्रविष्टियां 23 सितंबर 2024 तक भेजी जा सकती हैं।
Doordarshan completes 65 years of its glorious journey today. Established on 15 September 1959, Doordarshan marked the beginning of India's broadcasting era. The then President Rajendra Prasad inaugurated the first broadcast on that day. Until 1975, it was a part of All India Radio. On 1st April 1976, it transformed into a separate department in the Ministry of Information and Broadcasting and later came under Prasar Bharati. As an autonomous public service broadcaster under the government, it is one of the two divisions of Prasar Bharati. Today, Doordarshan remains India's largest broadcasting entity with a vast network of studios and transmitters. It provides television, online and mobile services reaching both metropolitan and regional areas as well as international audiences. Over the years, Doordarshan has grown into a network operating 35 satellite channels, of which 6 are all India channels and 22 are regional channels 24/7. DD operates 6 regional non-24/7 and 1 international channel with a total of 59 transmitters.
नई दिल्ली में भारत मंडपम में चल रहे चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के आज दूसरे और आखिरी दिन कई जानी मानी हस्तियां भाषा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगी। आज गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, महासॉलिसिटर श्री तुषार मेहता, जाने माने फिल्म अभिनेता अनुपम खेर और निर्माता निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी विभिन्न सत्रों की चर्चाओं में शामिल होंगे। कल हिंदी दिवस पर गृहमंत्री श्री अमित शाह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था।
वेल दिव्या, टुडे केरला इज सेलिब्रेटिंग थिरुओनम, द मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ ओनम, द बिगेस्ट कल्चरल फेस्टिवल ऑफ द स्टेट। केरलाइट्स अक्रॉस द ग्लोब, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस अफिलिएशंस, इज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल इन फुल विगर। President Draupadi Murmu has extended her greetings to the citizens on the occasion of Onam. In her message, the President said, Onam is an occasion to celebrate the rich cultural heritage and traditions of Kerala. The President said that this festival marks the harvesting of crops and is a time to celebrate the cultural heritage and traditions of the state. She also expressed gratitude to farmers who work tirelessly to feed the nation. President Murmu said the festival of prosperity also encourages people to promote social harmony.
भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग का रजत पदक जीत लिया है। कल बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नीरज ने 87.86 मीटर का थ्रो किया, जो उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो था, और वे केवल 1 सेंटीमीटर के अंतर से स्वर्ण जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता एंडरसन पीटर्स ने जीता। जर्मनी के जूलियन वेबर तीसरे स्थान पर रहे। यह लगातार दूसरा मौका है जब नीरज डायमंड लीग में उप विजेता रहे हैं।
More sports news. In the Chess Olympia 2024, the Indian team in both the open and women's sections achieved impressive 3.5 to 0.5 victories in the fourth round held in Budapest yesterday. In the open section, the Indian team defeated Serbia, while the women's team triumphed over France. In the women's team, Harika Drunavali on board 1 defeated Remant Kurnet. On board 2, R. Vishali was held to a draw by Sophie Milliet. Earlier, Taina Sachdev had defeated Natasha Benzema. The women's team will face Kazakhstan in the fifth round today.
और आइए अब शगुन बात करते हैं हमारे राज्यों से क्या क्या खबरें हैं।
Alright, Divya, we'll begin with Chennai first. The HCL Tech Chairperson Roshni Malhotra has said that artificial intelligence is a powerful tool and will create many new jobs. Speaking at a session organized by FICCI, Roshni said that AI may replace something, but it is creating many opportunities and everyone should look out for it. She said that about 70 to 80% of the workforce in HCL Tech were locals. She said that her company has a presence in 60 countries and everywhere almost 70% were locals. Staying with Chennai, fireman Mariappan Murugadose, 22, has bagged 4 gold medals at the international athlete competitions for fire and rescue services personnel in Denmark. He won gold medals in 200, 400, 800 and 1500 meter categories at the World Firefighter Games held at Aalborg, Denmark on September 9 and 11. He's a fireman at Tondiarpet Fire Station and had earlier won 3 gold medals at the state-level athlete meet for under 20 and under 21 category. At least 3,000 firefighters from all over the world attended the event held from September 7 to September 14. There were more than 40 events including marathon, tug-of-war, beach volleyball, swimming, water rescue, track and field and stare-run competition. Now focusing on Hyderabad, CRPF Group Centre at Chandrayan Gutta near Hyderabad has taken up a massive rally spreading the message of Swachhata Hi Seva. Malkajgiri Lok Sabha member E. Rajendra flagged off the rally from the Group Centre to Chandrayan Gutta flyover. Speaking on the occasion, Mr. Rajendra stressed on keeping the surroundings clean beside our own homes for remaining healthy. Referring to Prime Minister Narendra Modi's call, he urged people to maintain cleanliness. He also said the entire world will give the cleanliness call soon. Earlier, the CRPF men along with a large number of students have taken the Swachhata pledge. Now, focusing on Bengaluru, Karnataka state government and its departments will come together to form the world's longest human chain today as Divya. Today it's UN proclaimed International Day for Democracy. The human chain will be spanning 2,500 kilometers across 31 districts of the state from Bidar to Chamarajanagar. The departments are mobilizing 25 lakh people to link arms across the state tomorrow. The event is organized to highlight democratic principles and values. They will display banners and posters supporting our fundamental rights and duties, values of liberty and freedom of expression. Along with this event, it is also planned to plant 10 lakh saplings across the state tomorrow. Chief Minister Siddaramaiah will lead the human chain by reading the preamble of the constitution in Bengaluru and in districts. It will be led by the district in charge ministers and deputy commissioners. A world record team that has arrived in the state from London will be verifying the event to judge it as a world record. So these are the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now Divya will be sharing the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata.
बिल्कुल शगुना, और दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने दक्षिणी क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। एमसीडी ने बताया कि यह कार्रवाई विक्रेताओं और अवैध कब्जा करने वालों के संबंध में प्राप्त शिकायतों के संज्ञान में की गई। अभियान के अंतर्गत आईआईटी गेट से राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान तक पूरे क्षेत्र में फुटपाथों और सड़कों से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। वहीं एमसीडी द्वारा आने वाले सप्ताह में इस तरह के अस्थायी अतिक्रमण हटाने के अभियान को तेज किया जाएगा। जनजातीय शिल्प कला और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड का 5 दिवसीय आदि बाजार कल से शुरू हो रहा है। इस प्रदर्शनी का आयोजन मंडी हाउस के आगा खा हॉल में हो रहा है जिसका समापन गुरुवार को होगा। आदि बाजार में हस्तनिर्मित आभूषण से लेकर जैविक उत्पाद, जनजातीय उत्पाद और जनजातीय शिल्प कला आगंतुकों के लिए उपलब्ध रहेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने यात्रियों की संख्या में बड़ी वृद्धि को देखते हुए सभी मेट्रो लाइनों पर अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की शुरुआत की है। डीएमआरसी ने बताया कि इससे मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी और मेट्रो में होने वाली भीड़ को कम किया जा सकेगा। डीएमआरसी के अनुसार 20 अगस्त को 77 लाख से अधिक यात्रियों ने दिल्ली मेट्रो से यात्रा की, जो कि अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं इस महीने की 9 तारीख से 12 तारीख तक मेट्रो में 73 से 77 लाख यात्रियों ने मेट्रो का उपयोग किया। और अब जानते हैं मुंबई की खबरें। मुख्यमंत्री योजना दूत पहल में भाग लेने की समय सीमा बढ़ा दी गई है और अब पंजीकरण आवेदन 17 सितंबर 2024 तक जमा किए जा सकते हैं। नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए यह पहल शुरू की गई थी। कार्यक्रम में भाग लेने वालों को प्रतिमाह 10,000 रूपये का मानदेय मिलेगा। अब तक 1,66,000 से अधिक उम्मीदवारों ने इस पहल के लिए पंजीकरण कराया है। इच्छुक उम्मीदवार www.mahayojnadoot.org वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम निर्यात मूल्य को खत्म करने और निर्यात शुल्क को आधा करने के फैसले के बाद शनिवार को महाराष्ट्र के नासिक जिले के लासलगांव कृषि उत्पाद बाजार समिति में प्याज की कीमतों में उछाल आया। लासलगांव एपीएमसी देश के सबसे बड़े प्याज थोक बाजारों में से एक है। एपीएमसी में रसोई के मुख्य खाद्य पदार्थ की कीमतों में औसतन 433 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। और अब बात करते हैं कोलकाता से समाचार की। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को आरजी कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि उनके खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ और एफआईआर दर्ज करने में देरी के आरोप है। इससे पहले श्री मंडल से आज गिरफ्तारी से पहले जांच एजेंसी ने घंटों पूछताछ की। संदीप घोष ने इससे पहले संस्थान में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। और आज सवेरे में आप बात महानगरों के मौसम की।
राइट, बिगिनिंग विद चेन्नई। Right. So Chennai is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature will be 28 degrees Celsius and maximum will be around 38 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature will be 21 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain. The temperature will hover between a minimum of 21 degrees Celsius and maximum of 30 degrees Celsius.
और शगुन, दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और आइए अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
वेल टुडे, एज वी हैव मेंशनड इन द मेट्रो न्यूज सेक्शन, टुडे इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज बीइंग सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑन दिस डे लेट्स focus a bit on the history of this day. The International Day of Democracy was established through a resolution passed by the United Nations General Assembly in the year 2007, and the motive was to encourage governments to strengthen and consolidate democracy.
बिल्कुल शगुन, और आज ही के दिन इसी वर्ष में आपके इतिहास को देखें तो 1959 में भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी।
राइट, In the year 1953, S. Vijay Lakshmi Pandit was elected as the first lady president of the 8th session of the United Nations General Assembly.
और 1916 में प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार सोम्मे की लड़ाई में टैंक का इस्तेमाल किया गया था।
And moving forward, in the year 1931, Gandhi-Irwin Pact was signed.
1948 में स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत INS दिल्ली बम्बई के बंदरगाह पर पहुंचा था।
In 1997, Prasar Bharati Act came into force seeking to free Doordarshan and Akashwani from government control.
और 1971 में हरी भरी और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध ग्रीन पीस की स्थापना की गई।
And in the year 2000, the 27th Olympic Games started in Sydney.
और 2001 में अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति को अफगानिस्तान पर सैनिक कार्रवाई की मंजूरी दी।
In the year 2004, British citizen Gurinder Chadha was awarded Woman of the Year. And in 2008, Crampton Gibbs acquired MSI Group Company of America. In 2017, the Cassini spacecraft collided with Saturn's satellite Titan.
और अब वक्त हो चला है उनको याद करने का जिनकी आज जयंती है या पुण्यतिथि है. आज आधुनिक भारत के विश्वकर्मा डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती है. अपने समय के बहुत बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक और निर्माता के रूप में देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को विश्व की महान प्रतिभाओं में गिना जाता है. इनके योगदान को सम्मान देने के लिए विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है. विश्वेश्वरैया का जीवन बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक रहा है शगुन. वो बेहद गरीब परिवार से आते थे और उनका बचपन भी बहुत आर्थिक कठिनाइयों में गुजरा. उनके पिता वैद्य थे. वर्षों पहले उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहां मैसूर में आए और बस गए. और उनके पिता के स्वर्गवास के बाद आर्थिक संकटों से जूझते हुए भी उन्होंने अपने रिश्तेदारों और परिचितों के पास रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी एजुकेशन पूरी की. और उसके बाद देश में विश्वेश्वरैया ने सिंचाई में सहायता करने के लिए नहरें और बांध बनाए और उनकी पद्धति के द्वारा सिंचाई के सीमित पानी के साधनों का पूर्ण उपयोग संभव हो सका. और इसी के लिए 1955 में विश्वेश्वरैया को सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. उनकी जो महत्वपूर्ण अगर हम अवसंरचनाओं की बात करें तो मैसूर शहर में कन्नमबाड़ी या कृष्णराज सागर बांध बनाना उनका एक महत्वपूर्ण कार्य था.
Also, Divya, he is known for various outstanding works other than that in engineering and administration, including block systems of irrigation, automated floodgates, and a strategy on economic planning called the Visveswarya Plan, to name a few. All right, moving on. Today, we are also remembering John William Cummings, better known by his stage name, Johnny Ramone. He was an American musician who was the guitarist and a founding member of the Ramones, a band that helped pioneer the punk movement. The band was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in the year 2002. And for you listeners, we have this very upbeat, beautiful song, What a Wonderful World, to listen to.
बांग्ला के अमर कथाशिल्पी और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की आज जयंती है. इनका जन्म 15 सितंबर वर्ष 1876 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हुआ था. शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कालजयी कृतियों पर कई फिल्में बनी और धारावाहिक सीरियल भी बने. इनकी कृतियां देवदास, चरित्रहीन और श्रीकांत के साथ तो ये बार बार घटित हुआ. शरदचंद्र के उपन्यास हैं पंडित मुशाए, बैकुंठेर बिल, मेज दीदी, देवदास, ब्राह्मण की लड़की, सती, विप्रदास, देना, पावना आदि. इन्होंने बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर पथेर दावी उपन्यास लिखा और शरदचंद्र के कुछ उपन्यासों पर आधारित हिंदी फिल्में भी कई बार बनी. 1974 में इनके उपन्यास पर चरित्रहीन पर आधारित फिल्म बनी थी.
Also, we are remembering Thomas Leighton Wolfe, American novelist. His enduring reputation rests largely on his first novel, Look Homeward, Angel. He's also known for his other autobiographical novels such as Off Time and The River, and also some posthumous works such as The Web and The Rock, You Can't Go Home Again, The Hills Beyond, The Hound of Darkness, O Lost, A Story of the Buried Life, to name a few.
और आज आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट रामकुमार वर्मा की जयंती है. श्री वर्मा हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंगकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं. इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक है. रामकुमार वर्मा को उपन्यास चित्ररेखा पर, देव पुरस्कार पर, एकांकी संग्रह पर, अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार मिला. इनको भारत सरकार द्वारा वर्ष 1965 में पद्मभूषण अलंकरण से विभूषित किया गया. उनके कृतित्व से प्रभावित होकर स्विट्जरलैंड के मूर विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया.
Well, listeners, we are also remembering K.V. Reddy, film director, screenwriter and producer, primarily known for his work in Telugu cinema. He directed around 14 feature films during his career. His contributions earned him several prestigious accolades, including national film awards. His filmography includes films like Maya Bazaar, Shri Krishna Satya, Patal Bhairavi, to name a few.
तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। इन पंक्तियों के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। आज उनकी जयंती है। साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी रचा। उनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की। 1955 में उनकी नियुक्ति ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में सहायक संपादक हिन्दी समाचार विभाग के पद पर हो गई। इस पद पर वे 1960 तक रहे। उन्होंने लखनऊ रेडियो स्टेशन में भी अपनी सेवाएं दी। 1964 में कुछ समय भोपाल रेडियो में भी वे कार्यरत रहे। 1983 में कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोक के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया।
Also, it's birth anniversary of Agatha Christie, English detective novelist and playwright. She wrote some 75 novels, including 66 detective novels and 14 short story collections. She is one of the world's best-selling novelists of all time. Witness for the Prosecution, like many of her works, was adapted into a successful film. Other notable film adaptations included And Then There Were None, Murder on the Orient Express, Death on the Nile, and The Mirror Cracked from Side to Side. Her works were also adapted for television. Her plays included The Mousetrap, which set a world record for the longest continuous run at one theatre. Also, today we are remembering Bill Evans. It's his birth anniversary. He left the world today, Bill Evans. He was an American jazz pianist known for lush harmonies and lyrical improvisation. One of the most influential pianists of his time, Evans often worked in small groups, but he was also an innovative solo player who took full advantage of the recording studio on such albums such as Conversations with Myself and Further Conversations with Myself, which featured multi-tracking to create the effect of several pianos. His use of impressionist harmony, block chords, innovative chord voicings and trademark rhythmically independent singing melodic lines continue to influence jazz pianists today. And listeners, you are listening to his composition, Waltz for Debbie. So at the end of this section, listeners, let's share the update from India Meteorological Department. IMD has issued a red alert for extremely heavy rainfall in parts of Chhattisgarh and Jharkhand today. A similar alert has been issued for East Madhya Pradesh for tomorrow.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अब अनुमति दीजिए दिव्या तोमर और शगुन को कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
ऑल्सो लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, विच इज आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। वी विश यू हैव अ वेरी वंडरफुल वीकेंड एंड यू हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।